रूप बहरूप। आदम को जब अल्लाह ने बनाया तो इस तरह बनाया कि आदम अंदर ज्यादा देखता था और बाहर कम। बाहर देखता था तो बाग व तयूर, नहरें, आबशारें, बुलबुल का एक शाख से दूसरी शाख पर फुदकना, कोयल की कूक, कबूतर की गुटरगूं, चिड़ियों की चमक, फाख्ता की कू कू सुनता था। रंग रंग फूलों का मस्ती भरा शबाब, जवानी की खुशबू और खुशबू की महक से मशाम जां अतर बीज महसूस करता था। आदम एक बेखुद कर देने वाली कैफियत में गुम हो जाता था। खूबसूरत रोशें, राह गुजर पर कतार दर कतार हवा में झूमते फूल, सरो कद दरख्त, छतरी पेड़ नजर आते थे। इन सब में दिल लगाने के बावजूद आदम के अंदर एक टीस उभरती थी। कलेजा मुंह को आता था, घुटन आंखों से टपकती थी कि आदम का हम जिन्स कोई नहीं था। हम जिन्स को तलाश करते करते जब वो थक गया, अंदर से टूट गया, बिखर गया, तो आदम को बिखरे हुए जर्रात में अपनी हम जिन्स का अक्स दिखाई दिया। तस्वीर का गिलाफ आंखों, चांद चेहरा, गुंचा दहन, तबस्सुम तबस्सुम होंठ, सुराही गर्दन, सीमी बदन, गिलाफी आंखें, मकनातीसी कमर, मुअत्तर सरापा, कुदरत का शाहकार, तस्वीर को देखा तो आदम इस पर फरीफ्ता हो गया। जब इसे अपने अंदर अपनी ही तस्वीर का दूसरा रुख नजर आया तो तस्वीर पर इसका जहन मरकूज हो गया। जहन में मरकजियत आई तो इरादा पैदा हुआ। इरादे में हरकत हुई तो अंदर मौजूद इस तस्वीर ने पलक झपकी। पलकों का झपकना था कि आदम के दिल में पहले से मौजूद रोशन नुक्ता खुल गया। रोशनी और नूर का एक साथ झमाका हुआ और आदम के अंदर से तस्वीर बाहर आ गई। आदम एक कदम आगे बढ़ा तो तस्वीर दो कदम आदम की तरफ आई। दोनों का बाहम अतसाल हुआ और आदम व हव्वा एक दूसरे में जज्ब हो गए। आदम ने जज्ब होने के लिए खुद को हव्वा के सुपुर्द कर दिया और हव्वा ने आदम को इसकी पूरी सलाहियतों और तवानाई के साथ अपने अंदर समेट लिया। ये जज्ब होना और सिमट कर दोनों का एक हो जाना फितरत को पसंद आया। फितरत ने अंगड़ाई ली। फितरत को यूं बेताब देखकर इसकी दादरसी के लिए जिबिल्लत ने अपना चोला उतार फेंका। फितरत और जिबिल्लत आपस में यकजान दो कालिब बन गईं। आदम और हव्वा फितरत और जिबिल्लत के संजोग को देखकर कायनात की सरशारी में नीचे उतर आई और इस तरह नजूल व सऊद शुरू हो गया। कायनाती कानून ये बना कि जब दो सूरतें एक दूसरे में जज्ब होंगी तो तीसरी तखलीक अमल में आ जाएगी। कानून की अमलदारी के बाद एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर और दो तस्वीरों के मिलाप से तीसरा वजूद आलम मज़ाहिर में आने लगा। आदम के बेटों, हव्वा की बेटियों से ज़मीन और बस्तियां आबाद हो गईं और बस्तियां शहर बन गईं। एक शहर में एक बाप और इसके चार बेटे रहते थे। बाप ने चारों बेटों की तरबियत इस तरह की थी कि चारों बेटे एक ही जान के अलग अलग हिस्से थे। सब में ईसार था, सब में मोहब्बत थी और सब एक दूसरे के काम आते थे। सब में एक ही माँ का खून दौड़ रहा था। ममता एक थी, ममता के मज़ाहिर चार थे। चारों गबरू जवान निकले, चारों जब ज़मीन पर चलते तो ज़मीन अपने वजूद को और ज़्यादा फैला लेती थी। सच्ची बात यह है कि ज़मीन ही सबसे बड़ी माँ है। जब बच्चों ने ज़मीन की कोख को कुरेदा तो इनके लिए खुद को लहलहाते खेत और खलियानों में तब्दील कर दिया। चार बेटे जब अपने अंदर की आग की तपिश से झुलसने लगे तो इन्होंने अपने बाप आदम के सबक को दोहराया। बिलाखिर ये चारों बेटे आदम व हव्वा के रूप में बहरूप बन गए। दो आदम अपनी हव्वाओं को लेकर अलग हो गए। दो भाई अलग नहीं हुए। बड़े भाई ने सोचा कि छोटा भाई अभी कमज़ोर है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं इसकी मदद करूं। बड़े भाई ने यह तरीका इख्तियार किया कि रोज़ाना गेहूं की कोठी में से इतना गंदम निकाल लेता था कि जितना रोज़ का खर्च था। छोटे भाई ने सोचा कि मैं छोटा हूं, बड़े भाई के आसाब पर इन्हितात आ गया है, छोटा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि भाई की खिदमत करूं। इसने भी यह तरीका इख्तियार किया कि रोज़ाना का खर्च अपने गेहूं की कोठी से भाई की कोठी में डालना शुरू कर दिया। एक साल गुजरा, दो साल गुजरे, तीन साल गुजर गए, घर खुशहाल और सुकून का गहवारा था। चौथा साल आया, बड़े भाई की जोरू ने यह काम किया कि बड़ा भाई छोटे भाई की कोठी में जितना गंदम डालता था वो इससे दुगना निकाल लेती थी। छोटे भाई की बीवी ने सोचा कि मेरे शौहर की कमाई बड़े भाई को जा रही है, इसने ये काम किया कि अगर छोटा भाई बड़े भाई की कोठी में एक किलो गंदम डालता तो वो चार किलो गंदम निकाल लेती। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि दोनों भाई कंगाल हो गए।